हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गाड़ी चलाते हुए वेदांत का दिमाग शांत नहीं था, साथ ही साथ उसे अपनी सोच पर भी गुस्सा आ रहा था। वो हर बार कैसे अपने ही भाई की गलती निकाल देता है। उसे अब महसूस हो रहा था कि जब जब उसने रूहान पर हाथ उठाया है, तब हो सकता है कि हमेशा ही सामने वाले की गलती रही हो, लेकिन उसने अपने भाई को कभी समझने की कोशिश नहीं की। हर बार उसने रूहान पर गलत इल्ज़ाम लगाए। शायद यही वजह है कि उसका भाई उससे इतनी नफरत करता है। उसने गाड़ी के रियरव्यू मिरर से पीछे की सीट पर बैठे रूहान को देखा, जिसकी नज़र एक पल के लिए भी अनाही के चेहरे से हट नहीं रही थी। रूहान की आंखों में अनाही के लिए जो फिक्र थी, उसे देखकर वेदांत के होठों पर एक छोटी सी सुकून भरी स्माइल आ गई। वेदांत ने मन ही मन सोचा, शुक्र है कि अनाही विहा जैसी नहीं है, वरना रूहान का क्या होता। ये सोचकर ही वेदांत को घबराहट हो रही थी। विहा जिस बात को पकड़ लेती है, उसे छोड़ने में उसे महीनों लग जाते हैं। वो उसी बात को बार बार दोहराकर अपना भी दिमाग खराब करती है और सामने वाले का भी। उसे ओवरथिंकिंग की बहुत खतरनाक वाली बीमारी है, जो थोड़ी बहुत रूहान को भी है। लेकिन अनाही हमेशा ही शांत बर्ताव से उसे संभाल लेती है, चाहे वो खुद अंदर से कितनी भी टूट रही हो। जिस वक्त उसे लगता है कि रूहान रोने वाला है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, वो तुरंत ही समझदार बन जाती है और अपनी तकलीफ़ भूलकर बस रूहान को समझाने लगती है। थोड़ी देर बाद वेदांत की गाड़ी उसके ऑफिस के सामने जाकर रुकी। वो इस हालत में उन लोगों को सीधा घर तो नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे और ऐसे वक्त में अनाही और रूहान का इस बिगड़ी हुई हालत में जाना उन लोगों को भी परेशान कर देता। इसलिए वो चाहता था कि ऑफिस में ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, रूहान थोड़ा शांत हो जाए और अनाही का सरदर्द कम हो जाए। और साथ ही साथ उसे अनाही को ये भी बताना था कि आखिर अदिति ने रूहान के साथ कैसा बिहेवियर किया था और किस वजह से रूहान का वो खौफनाक गुस्सा ट्रिगर हुआ था। ये सच जानना अनाही के लिए बेहद ज़रूरी था। गाड़ी के झटके से लुकते ही अनाही ने घबराहट में तुरंत अपनी आँखें खोलीं और सामने की तरफ देखा। उसके दिल में यही डर था कि कहीं वेदांत उसे वापस घर तो नहीं ले आया है, क्योंकि वो अभी किसी भी हाल में घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने ऑफिस पर पड़ी, अनाही ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली। उसका डर थोड़ा कम हुआ तो उसने रूहान की तरफ देखा। रूहान बड़ी ही मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए बस उसे ही देख रहा था, जैसे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके अगले ऑर्डर का वेट कर रहा हो। रूहान को इस तरह बुत बनकर बैठे देख अनाही ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हल्के गुस्से में तंज कसते हुए कहा, क्या अब मैं आपके लिए दरवाज़ा भी खोलूँ? उतारिए ना। अनाही की बात सुनते ही रूहान हड़बड़ा गया। वो जल्दी से हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना था। मैं तो बस देख रहा था कि आप ठीक हैं या नहीं। इतना बोलकर रूहान ने फुर्ती से अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और फिर तेज़ी से दौड़ते हुए गाड़ी की दूसरी तरफ अनाही के पास आया। लेकिन अनाही ने जैसे ही अंदर से दरवाजे का हैंडल घुमाया था, उसे ठीक पहले रूहान ने बाहर से दरवाज़ा खोल दिया। अनाही ने इस बार भी अपनी आँखें छोटी करके उसे घूरा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर तेज़ कदमों से वेदांत के पीछे पीछे ऑफिस की तरफ जाने लगी। रूहान बस अपनी जगह खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी मैडम जी उसे प्यार से सब कुछ समझाएंगी। वो उनके गुस्से के शांत होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, साथ ही साथ उसे खुद पर भी हल्का गुस्सा आ रहा था। अदिति जैसी भी थी, पर आखिर वो एक लड़की थी, वो उसे किसी और तरीके से भी हैंडल कर सकता था। बात उसे सीधा मारने तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये सब कुछ रश्मि के इलाज का साइड इफेक्ट है या कुछ और। वो अपना सर खुजाते हुए उलझनों में घिरा, धीमे कदमों से अनाही के पीछे पीछे अंदर की तरफ चल दिया। वहीं अंदर जूली, जो रिसेप्शन पर किसी से बात कर रही थी, उसने जैसे ही वेदांत को आते देखा, उसके होठों पर एक राहत भरी स्माइल आ गई, क्योंकि वो अकेले काम करके काफ़ी परेशान हो गई थी। वेदांत के पीछे पीछे अनाही को आता देखकर उसकी स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। लेकिन मैम के पीछे जैसे ही उसने रूहान को देखा, उसका सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह गया। रूहान के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और उसका हाल देखकर साफ लग रहा था कि वो ज़रूर किसी से लड़कर आया होगा। जूली ने रूहान की हालत देखकर मन ही मन झुंझलाते हुए कहा, ये सर ना तो खुद काम करते हैं और ना ही वेदांत सर को अच्छे से काम करने देते हैं। इससे तो अच्छा है कि ये घर पर ही रहें। मुझे इनकी और विहा मैडम की प्रेजेंस ऑफिस में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये लोग बस कुछ भी करते रहते हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। जूली उन एम्प्लॉयज़ में से थी जो अपनी कंपनी को बिल्कुल किसी सितारे की तरह चमकते हुए देखना चाहते थे, और उसे पता था कि अगर काम लेट होगा तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए घाटे वाली बात होगी। रूहान ने जैसे ही जूली के चेहरे पर आई डिसअपॉइंटमेंट को देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने उदास होकर अपने मन में कहा, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे देखकर ऐसे क्यों मुंह बना लेते हैं? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? फिर मैडम जी मुझे कैसे माफ करेंगी अगर मैं सच में इतना बुरा हूं? ऑफिस के बाकी सब एम्प्लॉयज भी बहुत अजीब और सवालिया नजरों से रूहान को देख रहे थे, पर उन्हें साथ में वेदांत का डर भी था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे और ना ही ज्यादा देर तक रूहान को घूर रहे थे। सब जल्दी जल्दी अपने अपने काम में लग चुके थे। वहीं अनाही का सर इतना तेज दर्द कर रहा था कि उसे आसपास देखने या किसी के रिएक्शन को नोट करने की फुर्सत ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो लोग वेदांत के केबिन में थे। रूहान भी कुछ सोचते हुए सर झुकाए उनके साथ साथ अंदर आ गया था। उसे वहां उस हालत में देखकर वेदांत ने होठों पर हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, वैसे अब तुम रेस्ट कर सकते हो, काफी ज्यादा परेशान हो गए हो ना, और तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं, बाहर सब लोग कितने अजीब तरीके से तुम्हें देख रहे थे। चलो तुम पहले अपने केबिन में जाओ, वहां फ्रेश होने के लिए कमरा है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े भिजवाता हूँ। रूहान ने आंखें छोटी करके शक भरी निगाहों से वेदांत को देखा तो अनाही ने तुरंत तेज आवाज में कहा, वेदांत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रूहान जी आप जाइए यहाँ से और पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और शाम तक सब कुछ सॉर्ट आउट करके जाएंगे, ताकि जब घर जाएं तो हमारे चेहरों पर 12 ना बजे हों और सब लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। इस बार रूहान ने बिना कोई बहस किए जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और अगले ही पल हवा की रफ्तार से कमरे से बाहर चला गया। उसे इतनी जल्दी जाते देखकर वेदांत ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए हैरानी से कहा, तुम्हारी बातें ये कितनी जल्दी मान लेता है, मैं तो इसे इसके भले के लिए भी कुछ कहूं तो ऐसे देखता है जैसे मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा पाप करने के लिए बोल दिया हो। अनाही ने सोफे पर बैठते हुए दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कराहते हुए कहा, मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे आज रात ऑफिस में ही रह जाना चाहिए, मैं इस हालत में घर नहीं जा पाऊंगी। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और फिर टेबल से एक ग्लास में पानी डालते हुए अनाही के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथों में पानी का ग्लास देते हुए वो बोला, पहले तो तुम ये पानी पियो और खुद को शांत करो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, शायद तुम्हारा मूड जिस वजह से बिगड़ा है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए।
अनाही ने उसके हाथों से पानी का ग्लास लिया और एक घूंट भरा। वेदांत वहां से उठते हुए वापस अपनी डेस्क के पास आया, उसने वहां से अपना लैपटॉप उठाया और फिर से अनाही के पास आकर बैठते हुए अपना लैपटॉप ओपन करने लगा। अनाही को समझ आ रहा था कि वेदांत उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता है। थोड़ी देर बाद ही लैपटॉप ऑन हो चुका था और स्क्रीन पर वो सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी जहां रूहान और अदिति की कॉन्वर्सेशन हो रही थी।